ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। अरबुदांचल के सुरम्य वादियों में स्थित ज्ञान सरोवर के इस मनोहारी परिसर में आयोजित कला एवं संस्कृति प्रभाग के राष्ट्रीय सम्मेलन में पधारे आप सभी कलाकार अतिथियों का हार्मनी हॉल में स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है। आज के इस चर्चा सत्र में स्वयं की शक्तिशाली अवस्था में अपने विचार पुष्पों की भावभीनी सुगंध बिखेरने के लिए मैं अतिथियों को मंच पर आमंत्रित करती हूँ। सर्वप्रथम मैं अपने अनुभवी विचारों को हमारे मध्य साझा करने के लिए वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्य लेखक, निर्देशक एवं अभिनेता श्री आलोक शुक्ला जी को मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि वे आकर अपना स्थान ग्रहण करें और मंच को शोभायमान करें। हमारे मध्य उपस्थित हैं अपने शक्तिशाली यौगिक प्रकंपन बिखेरने वाली आदरणीय राधा दीदी। आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ कि आप मंच पर पधारें और मंच की शोभा बढ़ाएं। इसके साथ ही मैं राजयोगिनी आदरणीय ब्रह्मा कुमारी नीति बहन को, जो शाहबाद मारकांडा अंबाला कैंट की सब जोन है, आपको भी मैं मंच पर आमंत्रित करती हूँ। अपनी रूहानी दृष्टि से सबको सराबोर करने हैं तो। बहुत ही अनुभवी वक्ताओं से हमारा मंच सज गया है। सर्वप्रथम चर्चा शुरू करने के पूर्व मैं सभी से अनुरोध करती हूँ कि हम सभी परम प्यारे परम पिता परमात्मा शिव की सुमधुर स्मृतियों में अपने चंद पल व्यतीत करेंगे और परमात्मा से ऐसी गुजारिश करेंगे कि आज घंटा डेढ़ घंटा जिस परिचर्चा में हम यहाँ अपना समय व्यतीत करने वाले हैं, इस परिचर्चा में कुछ ऐसे अनुभव हमारे दिल को छू जाएं जो हमारे जीवन में चमत्कारी परिवर्तन ले आएं। तो इसी प्रार्थना के साथ हम परम प्रिय परमात्मा का भी इस परिचर्चा में आह्वान करते हैं। तो अभी हम 3 मिनट परम प्रिय परमात्मा की सुमधुर स्मृति में अपना समय सफल करेंगे, अपनी हर श्वास सफल करेंगे परमात्मा स्मृति में। अब मैं ब्रह्मा कुमारी बहनों से विनम्र अनुरोध करती हूँ कि वे मंचासीन अतिथियों का पुष्प गुच्छ और बैच देकर स्वागत करें। हमारी आज की चर्चा का विषय है स्वयं की शक्तिशाली अवस्था, पावरफुल स्टेट ऑफ माइंड, मन की शक्तिशाली अवस्था। सबके मन की शक्तिशाली स्थिति अलग अलग प्रकार से रहती है। किसी का मन अर्थव्यवस्था की प्राप्ति से शक्तिशाली बनता है, किसी का मन स्वस्थ तन हो तो प्रसन्न रहता है, किसी का मन संबंधों में मिठास हो सुमधुर संबंधों की अनुकूलता से प्रसन्न रहता है, और किसी का मन ज्ञान की विद्वत्ता से प्रसन्न होता है। सबका अलग अलग सोच, अलग अलग दृष्टिकोण और अलग अलग व्यवहार होता है, लेकिन आज हम ये जानना चाहेंगे कि रियल में हमारा मन शक्तिशाली कब और कैसे बन सकता है या कब रहता है, किन परिस्थितियों में हमारी मन की अवस्था ऊपर नीचे होती है। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूंगी। हम जैसे सेंटर पर रहते हैं, वहां पर आए दिन कोई ना कोई आता है और अपने मन की बात कहता है। एक कुमार जो युवा है और जिसकी अभी ही पढ़ाई पूरी हुई है, एक दिन वो हमसे मिलने आए और अपनी मन की बात कहने लगे कि मैं एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना चाहता हूँ। तो मैंने कहा, सिर्फ बिजनेसमैन ही क्यों, एक अच्छा इंसान भी साथ में बना जा सकता है। तो उसने कहा, इंसान तो बाद में बनूंगा, पर मेरी सोच है कि जिसके पास धन है उसका ही नाम है, जिसके पास धन है उसके पास ही शक्ति है। तो मैं चाहता हूं कि मैं इतना धन कमाऊं कि अपनी धन की शक्ति से सब कुछ कर पाऊं जो मेरी चाहत है। कहता है, अगर मेरे पास धन नहीं होता तो मेरा मन प्रसन्न नहीं रहता, मेरे अंदर निराशा उदासी आने लगती है और मैं अपने आप को बहुत कमजोर और अकेला महसूस करता हूं धन के अभाव में। तो उसकी बात सुनकर मुझे ऐसा लगा कि धन ही उसके मन की शक्ति है। तो आज हम मंच पर बैठे हमारे अनुभवी वक्ताओं से ये जानेंगे कि हमारे स्वयं की शक्तिशाली अवस्था क्या है। तो सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी जो हमारे मंच पर बैठे अतिथि हैं, उनमें से भ्राता आलोक शुक्ला जी को। पहले मैं उनका परिचय आपको देना चाहूंगी। भ्राता आलोक शुक्ला जी, आप बहुमुखी प्रतिभा के धनी, वरिष्ठ रंगकर्मी, नाट्य लेखन निर्देशक एवं अभिनेता हैं। वह मध्य प्रदेश के रीवा शहर से आपने अपने रंगकर्म की शुरुआत की और लगभग 400 नाटक आपने लिखे, जिनके 600 शोज वे मंच पर अभिनीत कर चुके हैं। सर्वश्री हबीब तनवीर, सर्वश्री हबीब तनवीर, सागर सरहदी, अनमोल पालेकर जैसे कई नामचीन निर्देशकों और अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान जैसे सुपरस्टार्स के साथ आपने काम किया है। आपने कई फीचर फिल्मों जैसे डरना जरूरी, पहेली, कई लघु फिल्मों हलवा, सिर्फ तुम और कई सारे टीवी सीरियल्स, सास भी कभी बहू थी, शांति, घर एक मंदिर, CID, कृष्णा अर्जुन, स्वाभिमान, आहट, एक नया सवेरा, ऐसे अनगिनत नाटकों में अभिनय किया है। जून 2020 में GBS पैरालिस से पीड़ित हो जाने के बाद भी आपने अपने रंगमंच के सफर को जारी रखा और साहित्य कला परिषद नई दिल्ली के भरत मुनि नाट्य उत्सव में जनवरी 2024 को LIG सभागार नई दिल्ली में अपने स्वयं के द्वारा लिखित और निर्देशित नाटक उसके साथ परफॉर्म किया, जो शायद पूरी दुनिया में पहली बार किसी GBS पेशेंट का परफॉर्मेंस रहा। आपके द्वारा प्रकाशित नाट्य संग्रह ख्वाबों के सात रंग, पंच रंग, अजीब दास्ता, आपने कई पुस्तकें भी प्रकाशित की हैं, उसमें से एक आत्मकथा, एक रंग कर्मी की यात्रा और दूसरा अफसोस की खबर, आपको अनेक सम्मान भी समय प्रति समय प्राप्त हुए हैं। हाल में ही 2025 में राही पब्लिकेशन नई दिल्ली द्वारा आपको भारतीय लेखक का सम्मान प्राप्त हुआ। 2024 में इंडिया नेट बुक्स नाट्य पुरस्कार से भी आपको सम्मानित किया गया। तो इतने अनुभवी और अनेक विशेषताओं से सुसज्जित भ्राता आलोक शुक्ला जी हमारे मध्य उपस्थित हैं। अभी मैं आपसे आज की चर्चा के विषय से संबंधित ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि हमारी शक्तिशाली स्वयं की अवस्था कैसे रहे, उसके बारे में आप अपने अनुभवी विचार हम सभी श्रोताओं के सम्मुख रखेंगे। भ्राता आलोक शुक्ला जी।
ओम शांति। परमपिता परमात्मा को सादर नमन, श्री बाबा को सादर नमन। मंच पर इतने सुमधुर और स्नेहशील शब्दों से मेरे परिचय कराने वाली शकुंतला दीदी, आदरणीय राधा दीदी, नीति दीदी, सादर प्रणाम। और मेरे सामने सभी दिव्य आत्माएं जो हैं, उन सबको मेरा कोटि कोटि प्रणाम। प्रकाश जी, जो प्रकाश भाई रीवा से, मैं पता नहीं आप आए नहीं, उनकी वजह से आज मैं यहाँ मंच पर बैठा हूँ, तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं इस मतलब कि ज्ञान सरोवर में डुबकियाँ लगा रहा हूँ 3 दिन से, तो मैं क्या बताऊँ, मुझे ये समझ नहीं आता। मैं तो सुनने आया हूँ, सीखने आया हूँ, तो उसमें मुझे बड़ा मतलब कि समझ नहीं आ रहा कि आप लोग क्या बताऊँ। आप लोग से तो मैं सीख रहा हूँ, मैं जान रहा हूँ। तो मन की जो शक्तिशाली अवस्था है, आपसे बेहतर तो कोई, आप लोगों से बेहतर तो कोई बता नहीं सकता। हाँ, मेरे पास मेरा अपना अनुभव है। जब मुझे ऐसा मन की अवस्था के बारे में, शक्तिशाली अवस्था के बारे में जब पता चला कि आखिर कमजोर अवस्था जब होती है, तब उसमें से आप क्या, जब सबसे बेहद कमजोर क्षण होते हैं, उसमें जब आप कुछ शक्तिशाली सा महसूस करते हैं, तो वही एक ऐसा पल होता है जब मैं GBS पैरालिटिक अटैक आया और गले के नीचे पूरा मैं डेड हो गया था। राकेश साहू जी मेरे मित्र बॉम्बे से बैठे हैं, वो जानते हैं। प्रताप सिंह जी, डॉली जी, ये सब जानते हैं। मेरी पत्नी नीतू बैठी हुई है, उन्होंने जो किया। मेरे लिए वो बहुत तकलीफदेह और पीड़ादायक और मतलब कि कमजोर क्षण थे। जब गले के नीचे पूरा मैं डेड हो गया, तो आज जितना परिचय बता रहे हैं वो ईश्वर की कृपा, ईश्वरी प्रेरणा है। शायद यहां आया ये भी ईश्वरी प्रेरणा है। श्री बाबा ने बुलाया, परमपिता परमात्मा की इच्छा थी, वरना मैंने सोचा नहीं था कि मैं चल भी सकता हूं। क्योंकि आप जब साल भर बिस्तर में पड़े हों और सारा टट्टी पेशाब बिस्तर में कर रहे हों, एक मक्खी भी बैठ जाए तो आप हिला नहीं सकते। तो उस समय मैं तो टूट गया था, मुझे लगा मैं मर जाऊंगा। 4 लोगों ने और बोला मर जाएंगे। नीतू बैठी है, इसके लिए तालियां बजा दीजिए। एक मौन पीड़ा से हम दोनों एक दूसरे को देखते थे। बोलने की स्थिति तो थी नहीं, जब गले के नीचे कुछ चल ही नहीं रहा तो क्या बोला जा सकता है। और आसपास के सारे लोग ये इवन मैं भी सोचने लगा कि अब मैं बचूंगा नहीं, मतलब इमेजिन नहीं करेंगे कि जब हॉस्पिटल से लौटा तो मैं 73 किलो वाला सिर्फ 55 किलो बचा और जब घर आया तो 50 किलो, मतलब 23 किलो वजन एक महीने के अंदर गिर गया मेरा, सूख कर कांटा, और उसमें ऐसा लगा कोई बचेगा नहीं, सब ने सोचा, लेकिन इसने दिव्यात्मा है मेरे जीवन, संकल्प लिया। और कहते हैं संकल्प से एक ऊर्जा निकलती है, तो उनके संकल्प से मुझे जो ऊर्जा मिली उससे मैंने संकल्प लिया। मेरा अपना संकल्प नहीं था, लोग कहते हैं दूसरे के लिए संकल्प लिया जाता है, हाँ लिया जाता है, मेरी पत्नी ने लिया संकल्प लिया मुझे, उस संकल्प से मुझे ऊर्जा मिली और मैंने संकल्प लिया कि जो भी मैंने इतने सालों से लगभग 40 साल से थिएटर कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, हालांकि 400 नाटक नहीं है वो 40 नाटकों के शोज हैं, नाटक तो मैंने 150 नाटक लिखे हुए हैं, हाँ शोज किए हैं उसमें, तो मुझे लगा सब ये मतलब जब आपके यहाँ यहाँ जाना मैंने कि आत्मा जो है तो हम आत्मा है, आत्मा के जो स्वरूप है कि मन है बुद्धि है और संस्कार है कर्म है, ये सब बिखर गए थे। सब समेटने में उस संकल्प ने मदद की और संकल्प में ये हुआ कि मेरा जो भी किया जा रहा है वो मैं मेरी मौत के साथ खत्म नहीं होने दूंगा मैं। और तब उस बिस्तर में पड़े हुए धीरे धीरे फिर रास्ते निकाले। आप बिलीव नहीं करेंगे जो मतलब ईश्वर न करे ऐसी स्थिति का सामना करे, रात रात भर पके फूड़े जैसे पूरा बदन दर्द करता था, उठ सकता नहीं था, चल सकता नहीं था, पूरा गले के पूरा बदन दर्द कर रहा है, ऐसे में कौन सा ध्यान कौन सा मेडिटेशन क्या कुछ समझ नहीं आता, लेकिन नहीं वो संकल्प की जो ऊर्जा थी। और कहते हैं जो पसंद होता है, मेरे पिता बोला करते थे कि जैसे कोई बीमार होता था छोटे बड़े तो जो उसका पसंदीदा भोजन उसका बनाओ, उसको उसको जो पसंद है उसको ही वही खिलाओ। मुझे पसंद नाटक था, उस नाटक ने मतलब जो संकल्प मिली उस संकल्प ने एक और संकल्प को पैदा किया, उस नाटक ने मेरे अंदर एक चेतना पैदा की। तो जो लिखे थे नाटक लोगों से फोन किया, फोन में यहां रखते थे बच्चे मेरे, वाइफ उठा नहीं सकता था, फिर वहां से बात करता था लोगों से कि ऐसा ऐसा है ये, कुछ लिखने के लिए होता था तो बच्चे लिखते थे, पत्नी लिखती थी। और उसके बाद फिर पहला नाट्य संग्रह आया 2021 में साल भर के बाद, और वहां से एक कल सूरज भाई जी बता रहे थे कि न्यूरॉन्स होते हैं साइंस में जो है, तो वो जब आप अपने पसंद का कुछ करते हैं जो भी कर रहे हैं अगर वो आपकी पसंद बना ले या फिर जो आपको पसंद है वो करें, दोनों स्थितियों में आपके अंदर हार्मोन्स जो होते हैं वो रिलीज जो होते हैं वो आपकी पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हैं, कुछ नए रक्त संचरण करते हैं, आपको प्रसन्न करते हैं, और जब प्रसन्न होते हैं तो सारी चीजें हम उसी तलाश में हम लोग भटक रहे होते हैं कि हमको खुशी मिले प्रसन्नता मिले। तो न्यूरॉन्स जब बॉडी में जब रिलीज होते हैं हैप्पी हार्मोन्स बोलते हैं एंजाइम्स जो बोलते हैं, तो उसने एक हालांकि मैं ये नहीं कहूंगा कि इससे होगा, फिजियोथेरेपी मेरी चल रही थी, मेरी होम्योपैथी आयुर्वेदिक एलोपैथी सारी दवाएं चल रही थी, 15,000-16,000 का एक इंजेक्शन लगता था, मुझे 40 इंजेक्शन लगे थे, वो सब अपनी जगह था, लेकिन एक आत्मिक बल मन एलोपैथिक दवाओं से शक्तिशाली नहीं हो सकता, ना ही आयुर्वेदिक दवाओं से हो सकता है, ना होम्योपैथी दवाओं से, किसी दवा से तो नहीं हो सकता, दुआ से हो सकता है। तो दवा और दुआ, तो दुआओं में ये था कि जो भी था जो पसंद का था वो मैंने किया करता गया, उससे मुझे दर्द मतलब फिर मैंने बीमारी के बारे में सोचना बंद कर दिया। हम बीमार तब होते हैं जब बीमारी के बारे में सोचते हैं, बीमारी आप नहीं सोचेंगे तो शायद थोड़ा सा वो आपको थोड़ा सा दूर हट जाएगी कि ये तो सोच ही नहीं रहा है बंदा क्या करे, मतलब जैसे तनाव है आप उसको खुद आमंत्रित करते हैं, उसको नहीं सोचेंगे तो नहीं रहेगा आपके पास। तो बीमारी के बारे में जब मैंने सोचना बंद कर दिया तो फिर शायद बीमारी मतलब की है कि सोचा कि ये तो बेकार है, ठीक आदमी नहीं है ये, तो धीरे धीरे जो है तो उसने बीमारी ने दूर जाना शुरू किया। फिर मैंने अंगूठा चलना, अभी भी मैं पूरी तरह से उंगली नहीं, मैं जमीन से नहीं उठ बैठ सकता हूं, लेकिन हाँ आप इसी कल्पना करें कि जो गले के नीचे पूरा मर गया हो, दो चार आदमी उसको, मैंने पहली बार अनुभव किया कि एक्चुअली डेड बॉडी क्यों भारी होती है, मैं जब गले के नीचे हो गया तो मुझे चार आदमी भी बड़ी मुश्किल से उठा पाते थे, स्ट्रेचर से मतलब कि दो आदमी नहीं उठा पाते थे, इतना भारी हो गया था। मतलब आपका बदन अगर नहीं चल रहा, काम नहीं, तो डेड बॉडी इसीलिए भारी, क्योंकि जब नहीं है, आपकी सांस गई, प्राणवायु गई, तो आपका बदन मिट्टी हो गया। तो गले के नीचे का पूरा मिट्टी बदन था, इतना वजन था कि लोग बाग मतलब किसी के हाथ छिल जाते थे, कुछ मुझे तो समझ नहीं आ रहा था। तो बड़ी मुश्किल से उठाकर रखते थे कहीं मुझे, और उस स्थिति में जो है कहीं अंगूठा चलना शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे उठा बैठ के मतलब गिरता पड़ता था, पीछे से दो लोग पकड़ते थे, एक आगे से पकड़ता था चलने के लिए, ऐसे 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 ऐसे, ऐसे चलते चलते चलते। तो मन की शक्तिशाली अवस्था मुझे लगता है कि आप अगर आध्यात्मिक हैं तो बहुत मदद करता है। मेरी दिनचर्या थी कि मैं सुबह उठकर पूजा पाठ करता था नहा धोकर, लेकिन इसमें दिनचर्या मेरी नहीं हो पाई। तो आपको याद होगा रामकृष्ण परमहंस जी का मैं उदाहरण पढ़ा करता था कि वो इतने भाव विभोर हो जाते थे कि वो अगर लैट्रिन भी है तो भी मतलब कि वो स्तुति करते रहते थे माँ की। सेम उस वक्त मुझे लगता था कि ऐसे कैसे हो सकता है, बिस्तर पे पड़े पड़े, क्योंकि इतनी बुरी हाल थी कि कितनी बार डायपर वो निकालेगी, कैसे 10 बार 15 बार डायपर निकालना, बहुत ये हो गया था। मैं बिस्तर पड़े पड़े रोज सुबह जो है तो परमपिता परमात्मा का ध्यान करता था, पेशाब पड़ा है, पोटी पड़ा है, लेकिन मेरा ध्यान जो है मैं बस करता था, हनुमान चालीसा पढ़ता था उसी अवस्था में। वो ये लेखन का कार्य कर रहा था, तो उसने मुझे एक अंदर आत्मिक प्रसन्नता दी, आत्मिक प्रसन्नता ने मेरे अंदर एक आत्मबल पैदा किया, क्योंकि पसंद का काम कर रहा था, तो उसने उस आत्मबल जो पैदा किया और उससे जो कनेक्ट, मतलब कि मैं उसको इवन इससे ज्यादा नहीं हो सकता कि प्रेम, जैसे कहते हैं ना प्रेम करते हैं किसी से, मैंने उसको गाली भी गलौज भी किया है, दर्द की इंतहा में मैंने उसमें अपने भगवान को गाली भी दी है और उससे प्रेम भी किया है, डरा नहीं है उससे, मैं जितना डराना था डरा दिया। तो उससे फिर मैंने फिर वो आध्यात्मिक हुआ और पॉजिटिविटी, उस दौरान सब लोग बोलते थे सुनिए, तो सिस्टर शिवानी जी को सुनता था, रविशंकर जी को सुनता था, सीक्रेट एक फिल्म है, हर लैंग्वेज में है, उसको पहले भी देखा था बाद। तो मतलब इस पॉजिटिविटी आप बना के रखिए, ईश्वर पर आप अपना विश्वास रखिए, बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इससे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था नहीं हो सकती कि आप अगर आध्यात्मिक हैं तो, और अगर आप सकारात्मक बने हुए हैं या बने रहना चाहिए, इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। बहुत सारे लोग बोलते हैं, मुझे लगता है कि सकारात्मक होने के अलावा कोई रास्ता है ही नहीं। हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है, सकारात्मक रहना। नकारात्मक क्यों, तो वो रास्ता ही नहीं है हमारा। सबसे ज्यादा शक्तिशाली पावरफुल पोजीशन हमारी वो है जब हम पॉजिटिव रहें और आध्यात्मिक रहें, तो सारा कुछ हो जाता है।
बहुत अच्छा, बहुत ही सुंदर अनुभव है ना, इतने दुख में भी इतना इम्प्रूवमेंट कर लेना, ऐसी अवस्था जहां पर उठ नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, चल नहीं सकते, तो एक जो उत्तर निकल कर आया है, परिस्थिति कैसी भी निराश कर देने वाली हो, मन में कितना भी पहाड़ जैसा दुख हो, कोई भी अनुकूलता ना हो, लेकिन उसमें भी मन के सकारात्मक बने रहना, मन के भावों को सकारात्मक विचारों से भरे रखना, यह है मन की शक्तिशाली अवस्था को बनाए रखने का एक सुंदर उपाय। और अब इसी विषय पर मैं आमंत्रित कर रही हूँ हमारी राजयोगिनी अनुभवी राधा दीदी को। पहले मैं आपका परिचय दे दूं। राधा दीदी ब्रह्मा कुमारीज के मुख्यालय माउंट आबू शांति वन में, जो हमारा सबसे बड़ा कैंपस है ब्रह्मा कुमारीज का, अगर आपने देखा है तो, और नहीं तो जाते समय आप जरूर शांति वन में जाइएगा, बहुत ही बड़ा, हमारा सबसे बड़ा ब्रह्मा कुमारीज का सेवा कैंपस है शांति वन के नाम से। आप वहां पर वरिष्ठ राजयोगी शिक्षिका हैं, आपने 40 वर्षों तक मुंबई में ब्रह्मा कुमारीज गोरेगांव सेंटर के निर्देशक डायरेक्टर के रूप में काम किया है। आपने 1984 में ISS का एग्जाम पास किया, परंतु गवर्नमेंट जॉब न करके आपने अपना संपूर्ण जीवन मानव कल्याण की सेवार्थ समर्पित कर दिया ब्रह्मा कुमारीज में। आपने ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का प्रचार प्रसार करने के लिए अनेक देशों की यात्राएं की, रूस, सिंगापुर, मलेशिया, नेपाल, दुबई आदि में आपने ईश्वरीय ज्ञान और राज्यों का प्रशिक्षण प्रदान किया हजारों आत्माओं को। आप यूथ के प्रेरणा स्रोत हैं। संगीत और गायन में आपकी गहरी रुचि है। आपने कई संवाद, नाटक, नृत्य नाटिकाएं, पट कथाएं लिखी हैं और उन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रस्तुत किया है। आप एक कुशल वक्ता भी हैं। आपके प्रिय विषय हैं माइंड मैनेजमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, क्राइसिस मैनेजमेंट और आप एक अच्छी परामर्शदाता भी हैं। तो अब मैं राधा दीदी को आमंत्रित करती हूँ कि हमारे आज के इस परिचर्चा के विषय को स्पष्ट करें। स्वयं की शक्तिशाली अवस्था क्या है? दीदी, आप अपने अनुभव से हमारी श्रोताओं को इस विषय पर समझाइए।
ओम शांति, गुड मॉर्निंग आदरणीय मंच और सभा में उपस्थित आप सभी कलाकार भाई बहने, उस परम कलाकार की प्रिय संतान, सबसे पहले तो मैं सुन रही थी आलोक जी को, तो मैं उनको बधाई देना चाहती हूं कि यह जो एक शारीरिक अवस्था का आपको सामना करना पड़ा, उसे आपने अपनी मन की शक्तिशाली अवस्था, आपके संबंधी जो पर्टिकुलरली आप बता रहे थे, आपकी मिसेस बैठी हैं और दोस्त हैं, बिल्कुल, तो उनके सकाश द्वारा, उनके एनर्जेटिक संकल्प के द्वारा, उनकी पॉजिटिव एनर्जी के द्वारा जो उन्होंने आपके लिए संकल्प किया, जो आपके पिताजी ने या अन्य लोगों ने जो आपके साथ दिया, सहयोग दिया, और मैं ऐसा समझती हूँ कि सबसे बड़ा सहयोग इसमें आपकी अपनी मन की शक्तिशाली अवस्था का था, क्योंकि आप उनके सहयोग को स्वीकार करते चले गए और आज आप हम सबके बीच में हैं। तो आपको सबसे पहले मैं बधाई देना चाहती हूँ इस मंच की ओर से, हमारे इस कॉन्फ्रेंस की ओर से, हमारे मंच के वक्ताओं की ओर से और आप सभी भाई बहनों की ओर से कि आप हमारे बीच हैं, और ऐसी आशा करते हैं कि आप ऐसे ही हमारे बीच आते रहें और अपने अनुभवों को शेयर करते रहें और आपसे अनेक लोग प्रेरणा लेकर आगे बढ़ते रहें। यह जो सम्मेलन आयोजित किया गया है कि उस परम कलाकार की सर्वश्रेष्ठ कलाकृति दिव्य मानव, तो वो परम कलाकार दिव्य मानव बनाने में जो उसकी कला है, वो अपने बच्चों को जो वो कला सिखाता है, उसमें सबसे बड़ी कला यही है कि डिफरेंट परिस्थितियों में, विभिन्न परिस्थितियों में, डिफिकल्ट परिस्थितियों में, विघ्नों भरे जीवन में, समस्याओं में, चैलेंजेस में भी हम अपने जीवन को इस ढंग से जिए कि वो कला बन जाए। ये जीवन एक कला है, ये जीवन एक कला बन जाए। चलते सभी हैं, रास्ते पर सभी चलते हैं, लेकिन सर्कस में जब कोई रस्सी पर चलता है तब उसके लिए तालियां बजाई जाती हैं। चलना तो कॉमन चीज है, जीवन में सभी चलते हैं, लेकिन जब डिफिकल्ट परिस्थितियों में आप अपने मन की स्थिति को मजबूत रखते हैं और मजबूत रख करके उन परिस्थितियों से निकल जाते हैं, उसको एप्रिशिएट किया जाता है। हम सबके जीवन में अनेक कलाएं हैं, कोई संगीत में है, कोई नाच में है, कोई लिखने में है, कोई गाते हैं, कोई नृत्य कला करते हैं, लेकिन ये कला जीवन की, जीवन जीने की कला, ये परमपिता परमात्मा शिव बाबा ने जो राजयोग द्वारा सिखाई है हम आत्माओं को, जो पिछले 89 ईयर्स से ये कार्य चल रहा है, वो अपने आप में एक सर्वश्रेष्ठ कला है जो हमें जीवन जीने का ढंग सिखाती है। हम जानते हैं कि आजकल जीवन के विभिन्न पहलुओं में जीवन की विभिन्न बातें हैं, जैसे आजकल रिश्ते हैं, रिश्ते बिखर से गए हैं। देयर यूज्ड टू बी अ टाइम जब कुटुंब हुआ करते थे, परिवार इकट्ठे हुआ करते थे, एक दूसरे के लिए सैक्रिफाइस करते थे, जी जान लगाते थे, शायद लगता ही नहीं था कि जीवन में कोई समस्या आ भी रही है, वो कब समाधान मिल जाता था और सॉल्व हो जाती थी ये ध्यान पर ही नहीं आता था और जीवन इस तरह से इजीली आगे निकल जाता था। लेकिन धीरे धीरे समय बदलता गया, सोच बदलती गई, विचार बदलते गए और बदलते बदलते फैमिलीज माइक्रो होने लगी, छोटे छोटे परिवार होने लगे। जो माँ बाप कभी सोचा करते थे कि ये बच्चे हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेंगे, आज की तारीख में माँ बाप सोचते हैं कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इसकी शादी करनी है, पहले से ही अलग घर, एक अलग बंगलो ढूंढ ले, उसकी व्यवस्था कर ले, ताकि आने वाले दिनों में अगर वो साथ रहता है, कहीं रूठ कर किसी बात पर नाराज होकर छोड़कर ना चला जाए, जो जीवन भर साथ ना रहे, भले अलग रहे लेकिन दुख सुख में काम तो आए, दुख सुख में मदद तो करे। आज वो समय आ गया है, आज ओल्ड होम्स का कॉन्सेप्ट आ गया है, तो समस्याएं बढ़ रही हैं, और अगर हम उन समस्याओं में ही जीते रहेंगे तो जीवन को आगे कैसे बढ़ाएंगे। इसलिए जीवन को जैसे तैसे आगे बढ़ाने की बजाय परमात्मा सिखाते हैं कि आप अपने मन को ऐसा शक्तिशाली बनाइए जो मन शक्तिशाली बनकर आपको जीवन की हर परिस्थिति से आगे ले चले, निकालता चले, और आप एक सफल मानव बनकर चलते चलते एक दिव्य मानव बन जाएं। मन मालिक न बन जाए, मन आपका कार्यकर्ता बनकर, ये प्रकृति है, प्रकृति के तत्व हैं, जिन तत्वों से ये तन बना है, ये तन मालिक न बन जाए, ये आपके कार्यकर्ता रहे, कर्मेंद्रियां आपकी कार्यकर्ता रहे, आप सर्वश्रेष्ठ राजा बनकर इनकी पालना करें। जिस दिन कर्मेंद्रियां मालिक बन जाएंगी उस दिन राजा की क्या हालत होगी। जैसे ड्राइवर होता है, गाड़ी की ड्राइव करता है, गाड़ी को तो इंजॉय करता है, खुद भी डेस्टिनेशन पर जाता है और साथ में बैठे हुए जो उसके साथ चल रहे हैं उस गाड़ी में, उन्हें भी डेस्टिनेशन पर हैप्पीली पहुंचा देता है। जीवन भी एक यात्रा है, इस यात्रा में हम भी अपनी इस गाड़ी को ड्राइव कर रहे हैं, हैप्पीली अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएं, ये हमारे मन की आश है। लेकिन अगर गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए और गाड़ी ब्रेक फेल होने के बाद ड्राइवर के कंट्रोल में ना रहे तो क्या होगा? तो क्या होगा? केओस, हलचल, कई समस्याएं, कई मुसीबतें क्रिएट हो जाएंगी। इसलिए कहा गया है कि दीज फाइव एलिमेंट्स दे आर वेरी गुड सर्वेंट्स बट वेरी बैड मास्टर्स। तो आत्मा, मैं, मेरा मन मालिक बनकर कार्य करता है। जब मन मालिक बनकर जब सोचता है और ये कर्मेंद्रियां उसके सर्वेंट्स बनकर जब कर्म करती हैं, तो उस ड्राइवर का, आत्मा का, जो कंट्रोलर है, जो राजा है, जो किंग है, जो मालिक रूलर है, तो उसका कंट्रोल रहता है। तो अपने मन की सोच को अगर हम सही करते हैं, ठीक करते हैं, ठीक रखते हैं, भले कुछ भी सामने क्यों ना आ जाए, जिसे हम पॉजिटिविटी कह रहे हैं, तो वो हमारा मन हमें विभिन्न परिस्थितियों में सॉल्यूशंस देता है, आंसर देता है। तो दिस इज समथिंग जो आप कह रहे हैं कि मन की शक्तिशाली अवस्था क्या है, तो ये फिजिकल स्ट्रेंथ नहीं है, दिस इज इनर स्ट्रेंथ, आंतरिक शक्ति, हमारे मन की शक्ति। और आलोक जी भी जो कह रहे थे कि जो आध्यात्मिकता है, जो हमारे, अगर हम अपने भारतीय कल्चर को, पुराने कल्चर को याद करें, तो हमारे कल्चर में रही है, हमारी संस्कृति में रही है। तो अगर हम उसको आधार बनाकर अपने जीवन को आगे बढ़ाते हैं, अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाते रहते हैं, इनर स्ट्रेंथ से हम अपने आप को शक्तिशाली बनाते रहते हैं, तो जीवन में कुछ भी आने दो, कोई भी परिस्थिति आने दो, चाहे वो शरीर से रिलेटेड हो, चाहे वो संबंधों से रिलेटेड हो, चाहे वो धन से रिलेटेड हो, चाहे वो अन्य किसी प्रोफेशन से रिलेटेड हो, तो हम हर परिस्थिति पर काबू पाकर हम आगे बढ़ सकते हैं। हम उस परिस्थिति को पीछे छोड़कर अपने इस जीवन यात्रा को आगे ले जा सकते हैं, और वी कैन विन, वी कैन बी द विनर। इसलिए अपनी इनर स्ट्रेंथ को बढ़ाने की जरूरत है। तो आपने जो कहा कि मन की शक्तिशाली अवस्था क्या है, दिस इज द इनर स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ ऑफ द सोल, आत्मा की जो अपनी अंदर की ताकत है, उस ताकत को के बारे में हम बात कर रहे हैं।
हम इस पे भी बात करेंगे कि ये आत्मा क्या है और इसकी ताकत क्या है, इस पर भी हम बात करेंगे, क्योंकि हमारा विषय है स्वयं की शक्तिशाली अवस्था। तो ये स्वयं, ऐसे तो हम जानते हैं अपने आप को कि मैं कौन हूँ। अगर हम आपसे पूछे मैं कौन हूँ, तो आपका उत्तर क्या होगा? आप में से कोई बताना चाहेंगे, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ? मैं आत्मा हूँ। तो ज्ञान सरोवर में आके आत्मा बने कि घर में भी आत्मा थे? ज्ञान सरोवर में आके बने ना। हाँ, तो रियल सेल्फ को जानना, क्योंकि आज तक हमने जाना अपने आप को जो मेरा नाम और जो मेरा रूप है, है ना। जैसे हमने परिचय दिया कि आप आलोक शुक्ला जी हैं, आप ब्रह्मा कुमारी राधा दीदी हैं, आप ब्रह्मा कुमारी नीति बहन हैं, तो ये हमारे शरीर का नाम और शरीर का रूप, ये हमें दिखाई पड़ता है। लेकिन इस शरीर को चलाने वाली जो शक्ति है, जिसको राधा दीदी कह रहे हैं मन की शक्ति, जिसको दीदी ने इंट्रोड्यूस किया इनर स्ट्रेंथ, व्हाट इज इनर स्ट्रेंथ, ये आत्मा क्या है और आत्मा की शक्ति क्या है, इसको भी हम सुनेंगे। पर इससे पहले मैं आपको मुखातिब करा रही हूँ हमारे स्टेज पर बैठे हमारे अगले वक्ता, हमारी आदरणीय राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी नीति बहन जी से। इनका परिचय इस प्रकार से है, आप शाहबाद मारकंडा अंबाला कैंट सेंटर की मुख्य संचालिका एवं सब जोन कमेटी की सीनियर मेंबर हैं। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि आपके परिवार के 60 सदस्य इस ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग के साधक हैं। 60, शायद हमारे परिवारों में 60 सदस्य भी नहीं होंगे, इनके परिवार के 60 सदस्य राजयोग के साधक हैं, और प्रतिदिन राजयोग की साधना करते हैं और ईश्वरीय ज्ञान को आत्मसात किए हुए हैं, तो सोचिए कितने लक्की परिवार से हैं, है ना। तालियां बजाइए इस बात के लिए। ये बहुत सुखद है कि पूरा का पूरा परिवार एकमत होके एक ही राह पर चले, और एक ऐसी राह जो सिर्फ ईश्वर की ओर ही जाती है, जो निर्विकार है, निर्विचार है, निर्विकल्प है, जहां कोई विकार नहीं है, जहां कोई विकल्प नहीं है, एक ही संकल्प है, एक ही सार है। और वो सार क्या है, है ना, प्रेम करो परमात्मा से, प्रेम ही सुख का सार है, प्रेम ही सच्चा जीवन है, प्रेम ही श्रेष्ठाचार है। एक ऐसे परिवार की आप सदस्यता हैं, सदस्य हैं, हमें आप पर गौरव है। आप एक प्रबुद्ध वक्ता हैं, आपके कई प्रोग्राम्स जागरण और संस्कार टीवी चैनल्स पर प्रसारित होते हैं। भारत देश के कई स्थानों पर आपने राजयोग शिविर व योग भट्टी कराकर हजार भाई बहनों को ईश्वरीय संदेश दिया है और उनके दिल को ईश्वरीय प्रेम से भरपूर किया है। तो ऐसे नीति बहन हमारे बीच उपस्थित हैं। अब मेरा अगला प्रश्न नीति बहन जी से है। हमारा स्टेट ऑफ माइंड डिस्टर्ब क्यों होता है, हमारी मानसिक अवस्था डगमगाती क्यों है, जब कोई परिस्थिति आती है तो हम हलचल में क्यों आते हैं, हम विचलित क्यों हो जाते हैं, हम अपने आप को परेशान क्यों महसूस करते हैं, कई बार हम निराश हो जाते हैं, कई बार हम उदास हो जाते हैं, ऐसा क्यों होता है, थोड़ा सा आप अपना अनुभव हमसे शेयर करिए।
ओम शांति। सम्मानित मंच और आप सभी प्रभु की मीठी प्यारी सुखद अनुभूति करने वाली मेरी मीठी मीठी शिव बाबा की संतान, मेरे भाई और बहनों, बड़े अच्छे विषय को लेकर हम यहां उपस्थित हुए हैं। जीवन बहुत मूल्यवान है और जब हम इस धरा पर आते हैं, धरा पर आने के साथ ही हमारी जीवन लीला शुरू हो जाती है। इस जीवन को हमने कैसे यापन करना है वो हमारा जीवन दुनिया में कहा जाता है, पूत के पांव पालने में दिखाई देने लगते हैं। हमें नहीं मालूम कि जीवन में कितने संघर्ष करने पड़ेंगे, क्या क्या सुखद घटनाएं आएंगी, क्या क्या हमारे प्रति विपरीत घटनाएं घटेंगी, नहीं मालूम। क्योंकि हम धरा पर आए हैं तो हमें पार्ट टू प्ले करना ही है। ये सृष्टि एक रंगमंच है, अब इसमें हमें कुशल तरीके से, अच्छे तरीके से अपने पार्ट को प्ले करना है। मेरे जीवन में बचपन से एक छवि हमेशा रहती है और एक गीत मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये कौन चित्रकार है जिसने ये नदियां बनाई, जिसने ये पहाड़ बनाए, जिसने मानव जैसी एक ऐसी छवि को तैयार किया, एक ऐसी प्रस्तुति समाज को दी और उसमें सर्वश्रेष्ठ नाटककार, उस नाटककार में एक अभिनेता मैं समझती हूं कि जिसको मैं प्यार करती हूं और जो छवि मुझे अट्रैक्ट करती है वो आप सबको भी करती होगी। बता सकेंगे कौन सी छवि? परमात्मा, वो तो नाटककार है, विश्व रचयिता है, उसको हम इन आंखों से देख नहीं पा रहे हैं, अनुभव कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसी एक मूर्ति कहें, छवि कहें, व्यक्तित्व कहें, वो है भारत संस्कृति का एक सबसे बड़ा सत्व प्रधान व्यक्तित्व कृष्णा। लॉर्ड कृष्णा कहें, देव कृष्णा कहें, स्वीट कृष्णा कहें, मैं हमेशा याद रखती हूं जिसका बचपन जहां से शुरू हुआ, जिसका बचपन जहां से शुरू हुआ, जब वो समय था उसको अपनी मां से पालना लेने का, वो अपनी मां से पालना लेने का तो क्या, कंस की जेल में पैदा हुआ, जेल की चार दीवारी के अंदर वहां से निकला, और जन्म लेते ही उसने अपने कर्तव्य इस सृष्टि पर प्रारंभ कर दिए। जब उनके पिता उनको लेकर जा रहे थे मां यशोदा के पास, उन्होंने मात्र एक अपना छोटा सा अंगूठा स्पर्श किया जमुना मैया को, और वो शांत होकर के बैठ गए। वहां से निकले, बचपन शुरू हुआ जब उनको खेलना था बाल बच्चों के साथ में, बाल साथियों के साथ में, और वहां उनका प्रारंभ जीवन हुआ असुरों का नाश करने में। आप सोचिए, विचार कीजिए कि वो जो समय था उनका अपने साथियों के साथ खेलने का, एंजॉय करने का, अभोध मन, और तब वो उस आयु के अंदर असुरों का संहार कर रहे थे। एक आता था, दूसरा जाता था, तीसरा आता था, चौथे को करते करते वो जब अपनी एक यौवन की तरफ जा रहे थे, किशोरावस्था की तरफ जा रहे थे, उनको बाल गोपाल ऐसे साथी मिले, है ना, और एक छोटी सी बॉल यमुना में क्या चली गए, और वहां जाकर वो शेषनाग के फन पर एक सुंदर नृत्य करके समाज को क्या दिखाना चाह रहे थे वो, कि परिस्थितियां जो भी हों, है ना, लोग बहुत कुछ सोच रहे थे, लेकिन कृष्णा क्या कर रहा था, कृष्णा क्या कर रहा था, वो एक शेषनाग के फन पे भी खड़ा होकर के नृत्य कर रहा था। हम और आप सोचे, क्या ऐसी अवस्था में हम नृत्य, तो बहुत दूर की बात है, हम एकाग्र मन, शांत मन से बैठ सकते हैं क्या, अंदर मन क्या कहता है, है? और जब उनकी एक लाइफ में एक मोड़ आया जहां उनको राधा से प्यार हुआ, अभी प्यार का जीवन उनका चल ही रहा था, है ना, और उस प्यार के मोड़ पर अपनी प्रेमिका को छोड़कर उन्हें अपने कर्तव्य भूमि पुकार रही थी, वो मथुरा गए। हम और आप यहां बैठे, जिंदगी में पेपर परीक्षाएं किसको कहते हैं, जब हमारी मीठी प्यारी चीजें हमसे छूटती चली जाए, छूटती चली जाए, छूटती चली जाए। कृष्णा के जीवन में तो पल 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 पल, एक एक चीज उनकी प्यारी, एक एक अनुभव छूटते जा रहे थे, छूटते जा रहे थे। और जब वो मथुरा गए, मथुरा जाने के बाद उनके कर्तव्य में एक सबसे बड़ा मोड़ आया, एक ऐसे व्यक्ति का अंत करना जिसके पास हजारों हजारों मायावी शक्तियां थी, एक युवा, एक आपके हम सबके घरों में हमारे भाई हैं, आपके बच्चे हैं, जो किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ जा रहे हैं, और मैं तो आजकल देखती हूँ घरों में माता पिता के एक एक सपूत होने के कारण वो 15-16 वर्ष तक तो उनको अपने हाथों से गिट्टी खिलाते हैं। आप कृष्णा, जिसकी उम्र थी अपनी मां से प्यार लेने की, अपनी प्रेमिका के साथ खेल कूद करके उसके साथ हंसी मजाक करके उसके साथ खुशी का जीवन यापन करने का, और उसको छोड़कर वो कंस जैसी मायावी शक्ति का अंत करने वहां पहुंचा, और केवल एक मायावी शक्ति कृष्ण कंस का अंत नहीं किया, उसके अंत के साथ अभी उसने किया तो दूसरा शत्रु खड़ा हुआ, फिर तीसरा शत्रु खड़ा हुआ, फिर चौथा शत्रु खड़ा हुआ। एक को खत्म करते थे दूसरा खड़ा होता था, दूसरे को खत्म करते थे तीसरा खड़ा हुआ। करते करते आखिर उन्होंने सोच लिया कि मुझे मथुरा को छोड़कर ऐसी जगह जाना है जहां मैं शांति से अपने जीवन को यापन कर सकूं। और वो सात समुन्दर पार कि जहां कोई शत्रु पहुंच ही ना पाए, पानी के चारों तरफ जहां घिरा हुआ द्वारिका है ना, जहां कोई शत्रुओं की सेना पहुंच ही ना पाए, उन्होंने एक नगरी बसा दी द्वारिका, द्वारिका। और वहां भी वो पहुंचने वाले थे, उससे पहले उन्होंने अपनी प्रजा को बहुत अच्छी तरह से संबोधित किया कि मेरे साथ कोई गरीब हो, कोई अमीर हो, कोई भी हो, कोई भी आना चाहे तो आ सकता है। जिन्होंने कृष्ण को समझा था तो वो उनके साथ कोई पोटली बांध के, किसी को कुछ लेके जाने की जरूरत नहीं थी वहां। अभी कृष्ण ने उस द्वारिका में जाकर के अभी चैन से थोड़ा सा उस द्वारिका को बसाया। बड़ी कहानियां हैं लंबी, और अभी तो वो निश्चिंत एक टांग पर टांग रख के बैठते इससे पहले महाभारत युद्ध का संग्राम हम सब जानते हैं श्री कृष्ण का। उस महाभारत युद्ध से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन उस महाभारत के युद्ध में कितना उन्होंने कटाक्ष, कितनी सारी बातें कि ये सारा युद्ध कौन करवा रहा है, कि कृष्ण करवा रहा है। और इस युद्ध में उनको मां गंधारी का श्राप भी सहन करना पड़ा। बचपन से लेकर के जीवन के लास्ट मोमेंट तक वो कृष्णा, और उसके बाद भी उन्होंने गीता में एक बहुत अच्छी बात कही, हे अर्जुन तो अपने पर शासन कर, इस संसार में जिसको भी तू देख रहा है ये सब मरे पड़े हैं, ये सब खत्म हुए पड़े हैं। मेरे को एक छोटा सा दृष्टांत याद आ रहा है, चैलेंजेस। जब व्यक्ति के जीवन में चैलेंज आता है तभी व्यक्ति उभर के सामने आता है। बचपन से लेकर के हम स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, एग्जाम देते हैं, तभी हम दूसरी क्लास में जाते हैं। मुझे याद आता है कि एक राजा था, उसने सभा में अनाउंसमेंट किया कि मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उससे करूंगा। किससे? आप सुनकर आश्चर्यचकित होंगे, एक मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब, कि इस तालाब को जो क्रॉस करके इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाएगा, मैं अपनी राजकुमारी का विवाह उसके साथ कर दूंगा। बहुत सारे युवा वहां पहुंचे, और पहुंच करके उन्होंने देखा हम राजकुमारी बहुत सुंदर थी, प्रतिभाशाली थी। सबको होता ही है कि हमें ऐसी राजकुमारी मिले तो हम राजा बन जाएंगे। सब बहुत सारे युवा वहां, बहुत सारे राजे वहां पहुंचे हुए थे, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो उस राजकुमारी को वर सकेंगे। अचानक एक युवा इस किनारे से उस किनारे पहुंच जाता है, और उस युवा को देख करके राजा बहुत खुश, और जो भी वहां खड़े थे सब तालियां बजाने लग गए। आप होते तो क्या करते, तालियां बजाते? ताली तो बनती है ना। मगरमच्छ से भरा हुआ तालाब, और यहां से उस पार वो पहुंच जाए, उस राजा को बड़ी खुशी हुई कि एक तो निकला, परंतु वो बड़ा कमजोर सा था, देखने में खूबसूरत भी नहीं था, है ना। तो राजा ने उसको आगे बुलाया, वो बड़ा घबराया हुआ था, कहता राजकुमारी जी से तो मैं बाद में मिलूंगा, विवाह तो मैं बाद में करूंगा, लेकिन मुझे ये बताओ कि इस तालाब में मुझे पुश किसने किया था, धक्का किसने दिया था।
आपको समझ में आया? समझ में आया? परिस्थितियां इंसान को मजबूत बनाती हैं, और इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं है जो बिना परिस्थिति को पार कर महान बना हो। दुनिया में जिसने भी नाम कमाया है उसने बहुत संघर्ष पार किए हैं, कहते हैं ना, जिसने जीवन में संघर्षों को पार किया है उनको ही यत्र तत्र गौरव महान मिला है। बिना परिस्थितियों को पार किए कोई भी महान कर्तव्य किसी के द्वारा नहीं हुआ है, और वही इंसान मजबूत होता है जो बचपन से ही संघर्ष को फेस करता है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं, उसके पहले मैं हमारी ब्रह्मा कुमारी सुनैना बहन को स्टेज पे बुलाऊंगी, एक छोटी सी एक्टिविटी 3 मिनट की आपको कराएगी, उसके बाद हमारा आखिरी प्रश्न जो बहुत पावरफुल है, जो इस हमारे टॉक शो की जान है, फिर उस पर हम चर्चा करेंगे। सुनैना बहन 3 मिनट की एक एक्टिविटी कराएगी।
ओम शांति। हम सभी बहुत समय से बैठे हैं, इसलिए संकल्प आया कि आप सभी को थोड़ा एक्टिवेट किया जाए। आप कृपया खड़े हो जाएंगे, और अगर
सभी बीच में आ जाएं, जो भी इधर उधर बैठे ना, पीछे भी जो बैठे सब आगे आ जाएं, तो संगठित हो जाएंगे, तो बहुत आनंद आएगा। तो सभी से अनुरोध है,
और अगर कुर्सी से थोड़ा आगे पीछे आ जाए तो थोड़ा सा मूवमेंट में ठीक रहेगा। हम आपको एक एक्शन सॉन्ग की तरह कराएंगे। हम तीनों बहने हैं, इस एक्शन सॉन्ग का नाम है चूजों की डांस, चिकन डांस। और जैसे चिकन कैसे करते हैं, उनके चोंच कैसे करते दोनों हाथ से, हाँ, और उनके पंख छोटे छोटे होते हैं तो इस प्रकार से करते हैं, और जब उसके मुर्गी के पीछे पीछे जाते तो थोड़ा गिर भी जाते हैं एंड उठते हैं, और बहुत जोर जोर से ऐसा पटक पटक करके ताली बजा रहे हो, और आपस में घूमते घूमते नाचते हैं। तो हम अभी थोड़ी देर के लिए चिकन बन जाएंगे, राइट? रेडी है? ओके।
बहुत शुक्रिया सुनैना बहन का। चलो एक बार फिर से जोरदार ताली बजाओ, जितनी ताकत है उतनी जोर से बजाओ, और जोर से, अभी जोश नहीं आया है ताली में, और जोर से। शुक्रिया। अब हम अपने अंतिम और सार गर्भित प्रश्न पर पहुंच रहे हैं। कल हमने एक वक्ता के मुख से एक बहुत सुंदर विचार सुना था, लाइफ में प्रॉब्लम्स का आना है ना, पार्ट ऑफ लाइफ है। प्रॉब्लम्स का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन इनको सरलता से उससे पार हो जाना ये आर्ट ऑफ लाइफ है। तो आप और हम यहाँ पर आर्ट ऑफ लिविंग सीख रहे हैं। प्रॉब्लम्स लाइफ में नहीं आएंगी ऐसा कभी भी नहीं हो सकता। प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। प्रॉब्लम्स तो दिन और रात की तरह से है, जैसे रात का आना आवश्यक है तो दिन का होना भी अवश्यंभावी है। रात के बिना दिन का महत्व नहीं तो दिन के बिना रात का महत्व नहीं। तो जीवन में सुख दुख का होना तो आवश्यक है। तो बहुत सारी बातें, मन में नकारात्मक विचार भी आते हैं, कमजोर विचार भी आते हैं, व्यर्थ के विचार भी आते हैं, पर इन विचारों के आने के बाद भी, इन परिस्थितियों में जूझने के बाद भी हम अपने मन को सदा ही सकारात्मक और शक्तिशाली कैसे बनाए रखें, उसकी यथार्थ विधि क्या है, वो हम जानेंगे हमारी आदरणीय राधा दीदी से। कि मन सदा ही शक्तिशाली रहे, परिस्थिति कैसी भी हो, मन कभी बुझे ही नहीं, मन की प्रसन्नता कभी मिटे ही नहीं, मन सदा हर्षित रहे, प्रसन्नचित रहे, उत्साहित रहे, साहस में रहे। ऐसी क्या युक्ति रचे जो सदा ही क्या रहे, बस उजाला ही उजाला, रोशनी ही रोशनी और सकारात्मक ऊर्जा से मन सदा भरपूर रहे। ऐसी कोई सहज सरल युक्ति बताइए दीदी जो ये जीवन आनंद ही आनंद से सराबोर रहे।
हम सभी अनुभवी हैं कि जीवन में क्षण क्षण पल पल कोई ना कोई इस तरह की बातें आती हैं जो हम समझते हैं कि अगर उसके बारे में सोचते हैं कि ये ना होती तो अच्छा होता, परंतु जिस दौर से समय के हम गुजर रहे हैं, हम जानते हैं कि हम कहते भी हैं कि ये कलयुग है और बातें तो आएंगी। जैसे नीति बहन ने भी कहा, जब हम एग्जाम देते हैं, परीक्षाएं देते हैं, तभी क्लास नेक्स्ट होती है, तभी आगे बढ़ते हैं। लेकिन जब जीवन की इस प्रकार की बातें आती हैं तो क्या करें। तो जैसे हम इनर स्ट्रेंथ की बात कर रहे थे, इनर स्ट्रेंथ अर्थात ही आत्मा की अपनी निज की ताकत। और जो बड़ी सुंदर बात परमात्मा ने कही हुई है कि हर आत्मा में उसकी वो ताकत निहित है, हम में वो ताकत है, सिर्फ हम उसको थोड़ा सा उजागर नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बहुत सारी फॉरेन एलिमेंट्स आ गई हैं हमारे मन में, बहुत सारी ऐसी विकृतियां आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी बातें आ गई हैं, बहुत सारी ऐसी इच्छाएं चाहते आ गई हैं, जिन चाहतों के कारण, जिन इच्छाओं के कारण हम अपनी उन जो हमारी शक्तियां हैं वो थोड़ी प्रायलोप होती जा रही हैं, धीरे 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 वो डिम होती जा रही हैं। ओरिजिनली जो मैं हूं वैसा रहने की, वैसा सोचने की, वैसा करने की प्रैक्टिस करना। हमने पहले ही लेसन में, पहले ही सत्र में जो हमारा हुआ था, इसमें हमने स्वयं के बारे में जाना और स्वयं के बारे में हमने ये भी जाना कि मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं, मेरी 7 ओरिजिनल शक्तियां हैं, शांति, प्रेम, आनंद, सुख, ज्ञान, ज्ञान मतलब विजडम, पवित्रता, और शक्ति, ये ओरिजिनली मेरे अंदर हैं, दे आर देयर इन मी। हमें उन्हें बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है, दे आर विद इन मी, वो मेरी अपनी ही है। क्योंकि हम उनको भूल गए हैं और उनको भूलकर हमने बहुत सारी चीजों को अपना करके हम अपने आप को उन चीजों से संबोधित करते हैं, उन बातों से, उस स्टेटस से संबोधित करते हैं, इसलिए वो शक्तियां धीरे धीरे लुप्त हो जाती हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि वो शक्तियां बिल्कुल समाप्त नहीं होती। जैसे चांद, जब पूर्णमासी का चांद होता है वो फुल मून कहलाता है, जिसमें 16 कलाएं फुल है, 100% है। लेकिन जब धीरे धीरे अमावस आती है तो अमावस आने पर भी चांद की रोशनी बिल्कुल खत्म नहीं होती, एक छोटी सी लकीर रह जाती है। वो छोटी सी लकीर इन शक्तियों की हमारे अंदर आज भी है, बस उन शक्तियों को उजागर करना है। आई हैव टू लर्न वॉट आई एम एक्चुअली, मुझे लर्न करना होगा। एक्चुअली आई एम पीस, मैं पीसफुल सोल हूं, बट आई एंड पीस दे आर सिनोनिम्स, हम दोनों एक हैं, पर्यायवाची हैं। मैं ही शांति हूं, मैं ही प्रेम हूं, मैं ही सुख हूं, मैं ही आनंद हूं, मैं ही पवित्रता हूं। और जब हम इन शक्तियों की गहराई में जाते हैं और इनके स्वरूप बनते हैं, और जब हम हर कर्म करते हैं, अब कर्म करते समय शांति अर्थात ऐसा तो नहीं है हम चुप हैं, कर्म तो कर ही रहे हैं, लेकिन कर्म करते समय ही जब हमें अनेक दुविधाओं से फेस करना पड़ता है, तो उस समय कुछ इन स्पिरिचुअल 7 पावर्स से कुछ मॉरल वैल्यूज, कुछ ह्यूमन वैल्यूज जनरेट होती हैं, क्रिएट होती हैं, जिसको हम प्रैक्टिस करते हैं। अब कहीं कोई ऐसी बात आती है जहां कभी किसी से बहस हो जाती है, अब हूं तो मैं शांत स्वरूप आत्मा, लेकिन बहस हो गई और हम डिस्कशन में चले जाते हैं और मामला थोड़ा सा इस रूप से बढ़ जाता है। लेकिन कहीं जब ऐसा होता है तो हमें उस सिचुएशन को अंडरस्टैंड करके, समझ करके, बड़ा विजडम से चलना होता है और कभी उस मोमेंट को टॉलरेट करके चलना पड़ता है। सो आई हैव टू प्रैक्टिस टॉलरेंस, और जहां टॉलरेंस की प्रैक्टिस है वहां पेशेंस की भी प्रैक्टिस है। जैसे आलोक जी अपनी बात सुना रहे थे कि वो समस्या थी शारीरिक, लेकिन वहां भी टॉलरेंस चाहिए, न केवल उस पेन को सहन करने की टॉलरेंस, उसकी वो शक्ति, लेकिन उसके साथ साथ वो जो समय जा रहा है, ये कब होगा, ठीक होगा या नहीं होगा, ये क्यों विचार आता है, मन कमजोर हो जाता है, मन सोचता है कि पता नहीं, नेगेटिव मन में आ जाता है। लेकिन तब हम सोचते हैं कि नहीं, अगर सहन शक्ति है उसको हम सहन कर लेते हैं और थोड़ा पेशेंस रखते हैं, इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो मेरे जीवन में फिर शांति भी आती है। और जब कोई सामने से व्यक्ति गलत बोल रहा है और आप चुप हैं, कहते हैं जीवन में एक चुप 100 सुख, रिलेशंस में जब इस तरह की बात आती है तो कहते हैं एक चुप 100 सुख, लेकिन अंदर यूं हम चुप हैं लेकिन अंदर से हम एक्टिव हैं। क्या कर रहे हैं हम, ये वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं। हु एम आई, मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूं, मैं एक प्रेम स्वरूप आत्मा हूं, मैं स्थिर हूं, मैं शांत हूं, मैं निरिर हूं, मैं निश्चिंत हूं। और यही थॉट्स के वाइब्स हम उस आत्मा को भी सेंड कर रहे हैं जो आत्मा मेरे सामने है, उसको टॉलरेट भी कर रहे हैं, पेशेंस भी रख रहे हैं। सो ऑल दीज पावर्स वर्क टुगेदर। और जब ये पावर्स वर्क करना शुरू करती हैं तो धीरे 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 हमारी वो ओरिजिनल स्टेट ऑफ माइंड आती है और हम उस परिस्थिति पर विजय पाने लगते हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि एक बार, ये सत्य घटना सुना रही हूं मैं बहुत शॉर्ट में सुनाना चाहूंगी इसे। एक बहुत बड़ा परिवार जिसमें सभी जॉइंट जिसे इकट्ठे रहा करते थे, तो किसी ने, जैसे घर में होते हैं ना देरानी जेठानी वगैरह सब, तो किसी ने उनमें से एक के लिए कह दिया और उसको किसी बात पर ब्लेम कर दिया। और जब बड़ों ने सुना तो उनको बात अच्छी नहीं लगी और उस बहन को, वो अपनी बहू को कहा कि आपने ये क्यों किया। तो उन्होंने कहा, ये जो बहन थी शी यूज्ड टू स्टे इन बॉम्बे, और उनका परिवार गुजरात के किसी गांव में रहता था, उनका वहां छुट्टियों में जाना हुआ था, तो तब उनको ये बात कही गई। अब ये बात इनको, इन्होंने बहुत कहा कि नहीं पापा मैंने नहीं किया, ये तो मेरे पर कोई ब्लेम कर रहा है, आई हैव नॉट, मैं तो ये सोच भी नहीं सकती, मैंने ये नहीं किया। बट कोई उनकी बात को सुनने को तैयार नहीं। अब जो सुनने को तैयार नहीं है, थोड़ी इमोशनल, थोड़ी माइल्ड नेचर की, तो इनको ये बात बहुत पिंच हो गई, बहुत पिंच हो गई। और इतनी पिंच हो गई और इसके बारे में वो इतना सोचने लगी, इतना सोचने लगी, वापस बंबई आने के बाद भी वो अपने कार्यों को करती थी लेकिन कर नहीं पाती थी। और ये सब देखने के पश्चात उनके हस्बैंड उनको एक साइकियाट्रिक के पास ले गए, क्योंकि रात को नींद नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने क्या करेंगे, कंपोज दे दी, लेकिन उनकी ये समस्या हल नहीं हुई। कई दिन, सप्ताह, महीने बीतते गए और करते करते उनकी जो बीमारी थी इंसोम्निया की, नींद ना आने की, वो इतनी बढ़ती गई, हर बार डॉक्टर उनकी डोज को बढ़ा देता था। और जब वो मेरे पास आई, डॉक्टर ने उनको प्रिस्क्राइब किया कि आप ब्रह्मा कुमारीज के पास जाओ, तो शी टोल्ड कि दीदी मैं 22 गोलियां कंपोज खाती हूं। जस्ट इमेजिन ब्रेन की क्या हालत होगी। और वो 22 गोलियां खाने के बाद भी मैं सो नहीं पाती हूं, मुझे आप किसी तरह से इनसे छुड़ाइए। और हमने उनको एज यूजुअल अपना 7 डेज कोर्स प्रिस्क्राइब किया। और जब वो सुन रही थी, सुनते सुनते हमारा एक जो अष्ट शक्तियों का लेसन होता है और उस लेसन में सहन शक्ति की बात आती है, तो जब हमने उनको सुना रहे थे तो सुनते सुनते, देयर वाज अ ग्रुप सिटिंग एंड शी वाज आल्सो देयर, और वो सुनते सुनते रोने लगी। और जब उनसे पूछा गया, बहुत लंबी बात है उनकी, तो जब उनको बताया गया और कंटिन्यूअसली वो आती गई हमारे पास आती गई, तो धीरे 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 वो हील होती गई मन से, और वो स्ट्रांग बनती गई राजयोगा मेडिटेशन से, अपनी उस ओरिजिनल स्थिति को प्राप्त करने के बाद, जो आत्मा की अपनी ओरिजिनल है, अपने से कनेक्ट होने के बाद, परमात्मा से कनेक्ट होने के बाद, जब वो स्ट्रांग बनती गई, कुछ ही समय में वो एक गोली पर आ गई और नींद करने लगी। और ग्रेजुअली आज भी वो है, आज भी वो यहाँ हमारे माउंट आबू कॉम्प्लेक्स में आती हैं और यहाँ आकर के मिलती हैं, एंड बड़े फखर से कहती हैं, दीदी वर्षों से अभी मैंने एक भी कंपोज नहीं खाई है, एंड आई स्लीप वेल। अब रिलेशन की ये छोटी सी एक समस्या थी जिसमें किसी ने उनके ऊपर ब्लेम कर दिया, बट बिकॉज शी कुड नॉट टॉलरेट इट एंड शी कुड नॉट मेंटेन हर स्टेट ऑफ माइंड, शी कुड नॉट बी स्टेबल, इसके कारण ये समस्या उनके जीवन में आई, जिसके कारण उनके हस्बैंड भी परेशान, सब घर में परेशान। लेकिन जैसे ही उनको क्षमा कर दिया, कोई बात नहीं, मेरा ये कुछ कार्मिक अकाउंट था जो मुझे कह दिया गया, कोई बात नहीं, वो चुपता हो गया, वो पूरा हो गया। तो उन्होंने उस अपने उन वरिष्ठ को मन से क्षमा कर दिया। कोई अब अपने कल्चर में ऐसा नहीं है कि हम बड़ों के साथ कुछ इस प्रकार की बात करें, लेकिन जब मन से क्षमा कर दिया, उस बात को भूल भी गई। इसलिए लोग कहते हैं फॉरगेट एंड फॉरगिव, आई से फॉरगिव एंड फॉरगेट। पहले आप क्षमा करो, तभी आप भूल पाएंगे। आप भूलते हैं और फिर क्षमा करते हैं, ऐसा नहीं होता, फिर भुला नहीं पाते हैं। इसलिए अगर संबंधों में कोई ऐसी बात आ जाए तो आप उसे क्षमा कर दीजिए। कहते हैं टू एरर इज मैन बट टू फॉरगिव इज गॉड, मैन गेट्स एंड फॉरगेट्स, गॉड गिव्स एंड फॉरगिव्स। तो उन्हें क्षमा कर दीजिए। और ये क्षमा के गुण की इतना महत्वपूर्ण है, ये इतनी इसकी महत्ता है कि आप अंदर से खुद हील होते जाते हैं। आपने क्षमा उनको किया, हीलिंग यहां आती है। वो जो फील आपको हो रहा था, जो आप थोड़े से इमोशनल ज्यादा थे, सेंसिटिव ज्यादा थे, आप स्ट्रांग बनते जाते हैं। और आपकी वो जो स्ट्रांगनेस है, वो आपके जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं, जो सात वैल्यूज हैं, जो आलोक जी ने भी शुरू में कहा कि आध्यात्मिक तो आप लोग हैं, मैं तो शक्ति लेने आया हूँ। तो ये हमने भी कभी ना कभी ऐसे ही आपकी तरह शक्ति ली थी। हम भी आज भी ऐसी बातों से गुजरते हैं, और तब हम यही करते हैं कि अपनी उस पावरफुल स्टेट में स्थित हो जाते हैं। इसलिए मैं अंत करने के पहले ये बात कहना चाहूंगी कि कुछ ऐसे थॉट्स, कुछ ऐसे न केवल आध्यात्मिक थॉट्स हैं वो, लेकिन वो हमारे जीवन से लगते हैं शक्तिशाली थॉट्स, अपने मन में करते रहें, करते रहें। और स्पेशली जब हम रात को सोते हैं, तो अक्सर एक ट्रेंड हो गया है आजकल, तो बड़ा इजी हो गया है, मोबाइल बाजू में होता है और हम अक्सर यूट्यूब पर चले जाते हैं और वो रील्स को स्क्रॉल करते करते बहुत कुछ सुनते रहते हैं, बहुत सारी बातें लेके। अचानक से जब नींद गहरा जाती है और हम सोने लगते हैं, और हम उन्हीं थॉट्स में सो जाते हैं, और मन कमजोर होता जाता है, कमजोर होता जाता है। बहुत सारी हम ऐसी बातें सुन लेते हैं। इसलिए अपने मन को शक्तिशाली बनाने के लिए हम ये संकल्प करें, आई एम अ पावरफुल सोल, आई एम काम, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं शीतल हूँ। और इधर एक रेफ्रिजरेटर जरूर बिठा दें, आई एम कूल ना। उस ठंडे दिमाग से सोचें तो जरूर हम जितनी भी समस्याएं आती हैं उनको हम अपनी शक्तिशाली अवस्था से क्रॉस कर सकेंगे।
बहुत बहुत शुक्रिया राधा दीदी का, बहुत ही सुंदर तरीके से सहज और सरल भावों में हमें आपने स्पष्ट किया कि हम अपनी शक्तिशाली अवस्था कैसे बनाए रखें। और इसकी सुंदर विधि आप यहाँ सीख ही रहे हैं, जो सुबह आपका सबसे पहला सेशन होता है, मेडिटेशन सेशन। और यही वो सशक्त माध्यम है जिससे हमारा मन सदा ही सुंदर विचारों के चिंतन में रहता है और सर्वशक्तिमान परमात्मा से जुड़ा रहता है, जहां से हमारे मन के अंदर परमात्मा शक्तियां सदा ही प्रवाहित होती रहती हैं। राजयोग, मेडिटेशन और स्पिरिचुअल नॉलेज, इसके अलावा इस संसार में कोई भी विधि नहीं है इस मन को शक्तिशाली बनाने की। सबसे सुंदर, सहज, सरल और निशुल्क, निशुल्क विधि है ये, परमात्मा से शक्तियां लेना और अपने मन में भरना, ईश्वरीय ज्ञान का प्रतिदिन श्रवण करना और उसका दिन भर चिंतन करना, जिसको हम मुरली कहते हैं। यहाँ तो आप उसको कोर्स कह रहे हैं, लेकिन आप जब वापस यहाँ से लौट कर जाएंगे तो जिस सेंटर के कनेक्शन से आप यहाँ आए हैं, उस सेंटर पर आप प्रतिदिन जाएंगे और परमात्म ज्ञान, जो मुरली चलती है, उस मुरली का अगर आप प्रतिदिन श्रवण करेंगे तो रोज आपको परमात्मा के ऐसे शक्तिशाली महावाक्य सुनने को मिलेंगे जिनके चिंतन मात्र से हमारा मन शक्तिशाली बनता है। और कैसी भी परिस्थिति आ जाए, हम साक्षी रहते हैं, हम डिटैच हो जाते हैं उन परिस्थितियों से, और हम अपने मन स्थिति को उन परिस्थितियों से बहुत ऊंचा उठा लेते हैं। वो परिस्थिति हमें चींटी जैसी दिखने लगती है और हम बहुत शक्तिशाली अपने को महसूस करते हैं, और हम परिस्थितियों को ऐसे पार कर लेते हैं जैसे फ्लाइट में बैठकर हम पहाड़ों को पार कर लेते हैं। फ्लाइट में बैठकर पहाड़ और समुद्र को पार करना कितना आसान होता है, उसी तरीके से जीवन में आने वाली पहाड़ जैसी, हिमालय पर्वत जैसी कठिन समस्याओं को भी हम इतना ही सहज पार कर जाते हैं जैसे पक्षी और विमान में बैठा हुआ व्यक्ति पहाड़ और सागर को पार कर जाता है। तो मंचासीन अतिथियों का, और आपने इतने धैर्यता से और प्यार से इस कार्यक्रम को सुना, इसका लाभ लिया, इस कार्यक्रम को सफल बनाया, आप सभी कला प्रेमी बंधुओं का, भगिनियों का बहुत बहुत दिल से आभार और धन्यवाद। ओम शांति।